यह रहा चौथा सत्र राजस्थान जैन साहित्य परिषद जयपुर एवं समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र का आरंभ करने जा रहे हैं मंगलाचरण से। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं श्रीमती श्वेता बाकलीवाल को। श्रीमती श्वेता बाकलीवाल।
जो जग के संताप मिटाते जिनकी पावन चरण धूली से पग पग पर तीर्थ बन जाते नमन हमारा अरिहंतों को नमन हमारा सिद्ध प्रभु को तोड़ चुके जो भव की कारा जिनके निर्मल गुण चिंतन से कर्म नशे नमन हमारा आचार्यों को विश्व वंदे जो आचरणों से सहज मुक्ति लिपटी रहती है जिनके मंगलमय चरणों से नमन हमारा अरिहंतों को फिर है नमन उपाध्यायों को जो जग में निर्ग्रंथ कहाते ज्ञान ज्योति से पथ भूलों को राह दिखाते नमन हमारा अरिहंतों को नमन हमारा साधु जनों को जो परहित के जिनकी पावन निधियां सारी पांच नमन ये पुण्य विधायक इनसे होता पाप क्षमन है सभी मंगलों में मंगलमय यही प्रथम मंगलाचरण है यही प्रथम मंगलाचरण है यही प्रथम मंगलाचरण है।
धन्यवाद श्रीमती श्वेता जी। इस सत्र के विधिवत शुभारंभ के लिए भगवान महावीर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूं समाजसेवी व रत्न व्यवसायी श्रेष्ठी श्री नानक राम जी जैन साहब को। आपके स्वागत हेतु तिलक एवं माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करूंगी अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन अतिक्षय क्षेत्र श्री महावीर जी के माननीय श्री एन के सेठी साहब को। धन्यवाद। हमारे कल के दूसरे सत्र के प्रमुख वक्ता डॉक्टर जय कुमार जी जैन, जो नई दिल्ली से पधारे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप जिज्ञासियों के जो प्रश्न कल आप शंका समाधान नहीं कर पाए थे, वे आप अभी इस सत्र में आप शंकाओं का समाधान करेंगे। आपको 10 मिनट का समय है। 10 मिनट के अंतर्गत आप लोग और भी कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वे पूछ सकते हैं। आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे डॉक्टर जय कुमार जी जैन, नई दिल्ली। आपका विषय था जैन दर्शन एवं वास्तु विज्ञान।
मुनिश्री 108 भव्य सागर जी महाराज के चरणों में निमस्तु। आदरणीय धर्मानुरागी श्रावक श्राविका, मेरे सम्मुख प्रश्न अनेक है। मैं सीधे औपचारिकता से हटके विषय पर अग्रेसर हो जाता हूं। मानस स्तंभ को द्वार वेद क्यों नहीं माना जाता, ये प्रश्न है, और समग्र प्रश्नों में ये मौलिक प्रश्न है, इस पर चर्चा करते हैं। समय कम है, सूत्र रूप में चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे सामने जिज्ञासाएं बहुत हैं और समय बहुत कम है। तो कृपया, मैंने जो शोध आलेख बना के दी है उनमें सारे शास्त्रीय कोटेशंस हैं, ग्रंथ के सारे संदर्भ है। कृपया उस शोध आलेख को आप हमारे संयोजक श्रीमान अशोक जी, प्रोफेसर अशोक जी से आप संपर्क करें तो उसकी कॉपी आपको मिल सकती है। इसमें बहुत समाधान आपको मिलेंगे। मानस्तंभ निर्माण विधि की बात जब करते हैं तो मंदिर का एक अंग है, बिना मानस्तंभ का मंदिर पूर्ण नहीं होता। दूसरी बात, मूल नायक के ऊंचाई के हिसाब से मानस्तंभ की ऊंचाई 12 गुना होनी चाहिए, एक शास्त्र सम्मत बात है। तीसरी बात यह है, तीन कटनी के ऊपर चतुर्मुखी चार भगवान होते हैं, उन भगवान का और मूल नायक भगवान का दृष्टि का निक्षेप एक होने का विधान है, तो स्तंभ वेद नहीं होता। और तीसरी बात, जहां खंभ हो या स्तंभ हो उसके ऊपर चतुर्मुख भगवान विराजमान हो वो वेद नहीं कहलाता। एक उदाहरण के लिए, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज श्री ने मुझे धर्मस्थल के नजदीक एक वेनूर क्षेत्र है जहां भगवान बाहुबली जी की प्रतिमा 44 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है, मस्तकाभिषेक नहीं हो रहा, क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था। 3 साल पहले मैंने उनके आशीर्वाद से वहां पहुंचा तो मूर्ति के अगल बगल में 16 खंभे खड़े थे, ऊपर बीम्स नहीं थे, लोड नहीं था। और मैंने सारे वास्तु सर्वे रिपोर्ट करके हेगड़े जी को दिया, तुरंत वीरेंद्र हेगड़े जी ने उस खंभे को हटवाए, 32 दोष सब हटा दिए, तत्काल उस क्षेत्र के विकास नहीं, जीर्णोद्धार हुआ। वहां के MLA जैन बने, जिलाधीश जैन बने, वहां के केंद्रीय मंत्री धनंजय कुमार जी आज भी मंत्री हैं, और वहां के नए भट्टारक जी भी प्राप्त हो गए जो चारुकीर्ति मुड़बिद्री वाले हैं। तो ये साक्षात हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं। आगे चलते हैं, स्तंभ और भी हैं। धर्मचक्र का स्तंभ है, निर्वाण महोत्सव का है, जन्म महोत्सव का स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, इनके ऊपर धर्मचक्र भी हो तो स्तंभ वेद नहीं होता। जी, बात रही, हाँ, ये समान प्रश्न दो हो गए। मैंने बात सुनी है कि आजकल वास्तु पर काफी चर्चा होकर के मंदिर के सामने मानस्तंभ होने से ये द्वार वेद या वीतराग दृष्टि के लिए वेद मान करके मानस्तंभ को उठाने की बात हो रही है, जो गलत है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का दर्शन सुलभ होने के लिए एक रास्ता है और सम्यक दर्शन इसी से निर्मल होता और सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी होती। इसके अलावा मान स्तंभ अहंकार को स्तंभित करने का काम अगर कोई करता है, मान कषाय मनुष्यों में ज्यादा होता है, मान कषाय के कारण मनुष्य गति में हमें आज मौजूद है, और इस मान कषाय को अगर दूर करना हो तो मान स्तंभ होना आवश्यक है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है उन विज्ञजनों से कि मानस्तंभ को हटाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करें, गलत बात होगी। अब नेक्स्ट मेरे सामने जो प्रश्न है, आप दाई करवट करके सोने के लिए बोल रहे थे। देखिए दो बातें मैंने करी थी, एक सोते समय डावी करवट कहा था मैंने, डावी करवट माने लेफ्ट, अच्छा डावी से यहां राइट समझते हैं, नहीं नहीं, मैंने यह भी बताया था जिस तरफ हार्ट है, हार्ट की तरफ सोना है, इसका मतलब हार्ट रिलैक्स करना है, और अन्न तंत्र जहां है, अन्न तंत्र जहां अन्नाशय है, उस पचन तंत्र को व्यवस्थित करने के लिए उधर ही सोना पड़ता है शुरुआत में। ज्यादा थके हो तो एक ही करवट में आप उठ सकते हैं, लेकिन उठते समय आपको सीधे से उठना पड़ेगा, ऐसे नहीं। हाँ, आय निकालने के लिए आपने क्षेत्रफल में 8 का भाग देकर 8 बचने पर 8 आय बताई है, जबकि आय 1 से 9 होती हैं, जैसे गुणनफल करने पर। बात सही प्रश्न है, ये सटीक प्रश्न है, बुद्धि को बल देने का प्रश्न है। आचार्यों ने बताया वीतराग दृष्टि को निकालने के लिए चौकट के 9 भाग करने के लिए 1 आचार्य का मत है, और 1 आचार्य का मत है 8 भाग करने का। 9 भाग करने का जो विधान है, शून्य जब बचता है, शून्य को उन्होंने माना नहीं, तो वहां बचने के लिए 9 भाग करने के लिए कहा है। जैसे 8 से आप भाग दें, 8 से ऊपर हो तो भाग दे सकते हैं, शेष बचता हुआ अगर 8 से शून्य बच रहा है तो क्या करेंगे, उस समस्या के पूर्ति के लिए 9 भाग विधान की बात करी है, इसमें कोई विशेष तथ्य नहीं है। देव मंदिर, कुएं, बावड़ी, स्मशान, राजमहल आदि के लकड़ी आप काम में नहीं लेवे ऐसा आप मानते हैं, जबकि साउथ के प्रसिद्ध वास्तुशास्त्री तिरुपति रेड्डी का कहना है कि ऐसा करने में कोई दोष नहीं है। मैं जैन परंपरा की बात कर रहा हूं, धर्मायतन के जितने भी द्रव्य है, राज्य शासन के जितने भी द्रव्य है, उनको हम नहीं ले सकते हैं, उसका काउंट होगा निर्माल्य ग्रहण, दोष होगा। आप 10 दिशाओं के बारे में वर्णन करते हैं, जबकि 360 डिग्री 45 के 8 होते हैं। देखिए डिग्री निर्णय करने के लिए मध्य होना जरूरी है, मध्य वहीं से डिग्रियां स्टार्ट होते हैं, कोई भी डिग्री स्टार्ट होना हो, अधो ऊर्ध्व ये शून्य डिग्रियां हैं, नाम मात्र अलग अलग है, वहीं से डिग्री स्टार्ट होते हैं, तो 10 दिशा की कोई मतलब नहीं है। अष्टमंगल द्रव्यों को कहां व्यवस्थित करेंगे, ये प्रश्न है। घर में निर्माण दोष हो तो उसके निवारण के लिए अष्टमंगल रखने का विधान मैंने बताया था, 16 स्वप्नों को भी रख सकते हैं, इसके अलावा अष्टप्रातिहार के एक एक भी आप रख सकते हैं, ये विधान है। और पूर्वाधि 8 दिशाओं में जो नंदीश्वर भक्ति में अष्टमंगल का विधान बताया, भृंगाल ताल कलश ध्वज सुप्रतिष्ठ, इसी क्रम से आप 8 दिशाओं में भी रख सकते हैं। नहीं, झारी जल का प्रतिनिधि है, दर्पण उत्तर दिशा में रख सकते हैं, एक एक दिशा के तत्व हैं उन पर रख सकते हैं, इस पर एक स्वतंत्र विषय हो जाएगा। तो कोई भी अष्टमंगल किसी भी दिशा में रखे तो भी दोष नहीं है। ज्ञान वृद्धि के प्रक्रिया को विस्तार से बताएं, मैंने बताया था 7 अंगुल प्रमाण प्रतिमा का दर्शन करें, पूजन करें, प्रक्षालन करें, इससे ज्ञान वृद्धि होगी, क्योंकि 7 अंगुल प्रमाण का जो विश्लेषण आता है वो विश्लेषण ज्ञान वृद्धि के लिए संकेत है। तो दर्शन भी कर सकते हैं, वंदन भी कर सकते हैं, प्रक्षालन भी कर सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये समान प्रश्न आए हैं, मर्म स्थान क्या है, इनके प्रभावों को समझाइए। चौखट के बीच में, पहले प्रश्न का मैं जवाब देता हूं, मर्म स्थान क्या है? नवपद वास्तु, 81 पद वास्तु, 64 पद वास्तु, सरोवर के पद अलग हैं, तालाब के अलग हैं, कुएं के अलग हैं, इस तरह से पद विन्यास की बात है। राजप्रसाद के विन्यास की बात अलग है, मंदिर के अलग हैं, जैसे आप हॉल में बैठे हैं इसका भी अलग है। पद विन्यास करते समय ये जो पंखा चल रहा है वहां पर पीलर है, पंखे के साथ पीलर निश्चित होता है या है यहां पर, उसके बराबर में चौकट लगाना दोषयुक्त है, उसके बराबर में विंडो रखना दोषयुक्त है, दो पीलर के बीच में विंडो लगाना श्रेष्ठ है, दो पीलर के बीच में दरवाजा लगाना श्रेष्ठ है, लेकिन बराबर में नहीं लगाना चाहिए। एक बात, पीलर के साथ हम आगे चलते हैं, ऊपर लोड बेरिंग जा रहा है, एक तरफ से एक पीलर आ रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा पीलर आ रहा है, जहां पीलर जुड़ जाते हैं, टी पॉइंट बनता है, उसके नीचे कॉलम होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ करके 5 फीट इधर 5 फीट उधर पीलर खड़ा करते हैं, वो मर्म दोष कहलाता है, उससे लोड बेरिंग पॉजिट नहीं होता, उससे घर में अव्यवस्थाएं बढ़ जाते हैं, वास्तु का आयु कम हो जाता है, रहने वालों को बीमारी का दुख झेलना पड़ता है। चौखट के बीच में सांखल का कुंडा लगा, ये समान प्रश्न है, इनके मैं समान रूप से जवाब दूंगा। क्या वास्तु का प्रभाव राशि के अनुसार होता है? बिल्कुल सही है, ये भी एक मौलिक प्रश्न है। मैंने कहा था वास्तु और ज्योतिष ये सगे दो संतान हैं, एक पिता के और भाई भाई हैं। इसके साथ एक और प्रश्न है, वास्तु विज्ञान, ग्रह रश्मि माने जन्म कुंडली और कर्म सिद्धांत, इनका समीकरण क्या है? तो इनका समीकरण यही है, जो जीव जन्म लेगा अपने पूर्व संचित कर्म के साथ शरीर प्राप्त करेगा, नाम कर्म के भेदानुसार पूरा परिवार और वैभव प्राप्त करेगा, उसकी वो व्यवस्था है। उस व्यवस्था को इंडिकेट करने के लिए ग्रह रश्मि हम देखते हैं, कुंडली देखने के बाद 12 भावों से शरीर, रूप, बुद्धि, व्यवसाय, आयु, बीमारी सब विवेचन वहां से प्रतिफलित होते हैं, परिसर का भी परिचय होता, मात्र ये सूचना है, ये संकेत है। उसी संकेत के मुताबिक ऑफिस, फैक्ट्री, बिजनेस, ये सभी बातें सिद्ध होते हैं। यहां पहले केंद्र बिंदु कर्म सिद्धांत, बाद में व्यक्ति जीवन, बाद में वास्तु के विन्यास। तो ज्योतिष और वास्तु सगे भाई हैं और इनका प्रभाव कर्मों से ही जुड़ा हुआ है। बात रही राशियों के साथ क्या संबंध है, भवन निर्माण करते समय पिताजी अपने नाम से नाम राशि के मुताबिक भवन का आय निर्णय करते हैं। जब दो बेटे आ जाते हैं तो उस भवन के बीच दीवार खड़ा कर देते हैं और दो दीवार होने के बाद उस वास्तु का आय में फर्क पड़ता है, विवाद खड़े होते हैं, घर का वैभव कम होता है, धर्म वृद्धि भी खत्म हो जाती है, यह भी एक समस्या है। बात रही वास्तु के बीच में दीवार नहीं लगानी चाहिए, यह स्पष्ट निर्देश है, इसका मेरा कोटेशन लेख में लिखा हुआ है। नाम राशि के मुताबिक दिशाएं निश्चित हैं, दिशाओं के मुताबिक वास्तु के विन्यास भी निश्चित है, ज्योतिष और वास्तु का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। जैसे मंदिर बन रहा है, नसियाजी भट्टारक जी की भ अक्षर, मूल नायक महावीर स्वामी म अक्षर, शहर जयपुर, इन सब के वर्ण, नाडी, गण, योनि आदि का हिसाब लगा के व्यवस्था बिठा के ग्रह मैत्री बना के बनाना चाहिए। इस पर एक किताब अभी हमारे जैनों के लिए छपा हुआ है, आर्यिका विशुद्धमती माता जी उदयपुर से, उनकी अभी संलेखना हुई है, उनके द्वारा रचित ये ग्रंथ है, बड़ा मौलिक ग्रंथ है। नक्षत्र का विश्लेषण भी बहुत दिया है, 27 भेदों का गणित दिया है, केवल चौखट नहीं, दरवाजा नहीं, दृष्टि नहीं, वेदी नहीं, प्रतिमा नहीं, अंगोपांग को भी नक्षत्र के मुताबिक बिठा कर उन्होंने कैलकुलेशन दिया है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, छोटे मोटे कमियां हैं, वो विद्वानों से संशोधित होंगे तो ठीक होंगे, लेकिन वो टेक्स्ट के रूप में आप यूज कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा माने आग्नेय बेडरूम हो तो उसके दोष निवारण की विधि बताए। साउथ ईस्ट में बेडरूम होना दोष नहीं है, हो सकता है, सिर्फ सिराना दक्षिण में हो। मैं कल बताते बताते एक व्यवस्था और नहीं बताई, पूर्व के तरफ भी सिराना आप कर सकते हैं, और जो सोने से उठने का क्रम बताया था उस क्रम में आपका मुंह उत्तर को होगा उठने के बाद, जो करवट लेके उठेंगे तो पूर्व पे भी हो सकता है। साउथ ईस्ट कॉर्नर में घर के मुखिया नहीं सो सकता, उनके बेटे सो सकते हैं, वहां पर संतान नेक्स्ट जनरेशन वहां सो सकता है, यह विन्यास बताया गया है। हाँ, मैं क्षमा चाहता हूं, प्रश्न बहुत हैं, समय पूरा हो चुका है और मैं यहीं विराम लेता हूं, फिर मिलेंगे, और हो सके तो सेठी साहब को मैं इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में भेज दूं।
मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूं और जिज्ञासाओं के प्रश्नों की मौलिकता भी समझ रहा हूं। अगर आप सब लोगों की ऐसी इच्छा होगी तो मुनिश्री के चतुर्मास का जयपुर में होना निश्चित होते ही हम लोग इस प्रकार का एक आयोजन और करेंगे, जिसमें पूरा दिन डॉक्टर जयकुमार जी जैन को देना पसंद करेंगे। जय महावीर।
धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आज के हमारे प्रमुख वक्ताओं को बुलाऊं, एक सूचना है कि गाड़ी नंबर RJ143C9690 रेड जैन जिस किसी भी महानुभाव की है वे कृपया उस गाड़ी को वहां से हटा लें, वहां कुछ पार्किंग की प्रॉब्लम आ रही है और गाड़ियों को। हमारे आज के इस सत्र में दो वक्ता हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूं डॉक्टर शीतल चंद जी जैन। आप प्राचार्य दिगंबर जैन संस्कृत कॉलेज जयपुर हैं, मंत्री वीर सेवा मंदिर ट्रस्ट हैं, श्रमण विद्या संकाय के डीन हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, निदेशक हैं श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से एमए जैन दर्शनाचार्य सिद्धांत शास्त्री एवं पीएचडी किया है। लगभग 75 शोध आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। लगभग 15 छात्रों ने आपके निर्देशन में पीएचडी प्राप्त की है और लगभग 10 शोध छात्र वर्तमान में पीएचडी आपके सानिध्य में कर रहे हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञान दर्पण, इसके 4 भाग हैं, न्यायमणि दीपिका दार्शनिक ग्रंथ है, षट दर्शन संग्रह, ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। लगभग 1 दर्जन ग्रंथों का संपादन आप कर चुके हैं। लगभग 30 संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर शीतल चंद जी जैन, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने उद्बोधन से हमें प्रेरित करें। आपके स्वागत हेतु तिलक के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं महेश जी चांदवाड़ को कि वे कृपया तिलक लगाकर आपका स्वागत करें।
शांत्याभितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां भूयाद् भवक्लेश वयोपशांति शांतिर्जनो मे भगवत् शरण्या। बोलिए पूज्य मुनिवर 108 समाज सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर 108 भव्य सागर जी महाराज की। इस सत्र में उपस्थित विद्वज्जन और सृष्टि जन, जैसा कि आपको विदित है कि ये संगोष्ठी बिल्कुल हटकर के हो रही है। अभी तक जो संगोष्ठी अपन ने देखी हैं वो बिल्कुल एक उस ढंग की थी, परंपरागत, और ये वैज्ञानिक संगोष्ठी है। और समय की ये मांग भी है, और जैसे समय की मांग है तदनुसार विषय भी रखे गए। वास्तुशास्त्र के लिए काफी लोग जिज्ञासु हैं, सुनिश्चित इधर कई वर्षों में इस विषय का काफी प्रतिपादन हुआ है, कई ग्रंथ भी छपे हैं, और हम समझते हैं वास्तुशास्त्री भी बहुत तैयार हुए हैं इधर कई वर्षों में। जयपुर में ही कई वास्तुशास्त्री हैं। ये जरूर है कि इतनी उपस्थिति नहीं होती है साथ में, इसलिए इतने प्रश्न नहीं आते हैं, अन्यथा तो सब अपने अपने हिसाब से इसका करते हैं। राजकुमार कोठारी स्वयं वास्तुशास्त्री है जो बैठे हुए, तो और भी कई हैं, तो अच्छी बात है। और ये निश्चित है कि जयकुमार जी ने जो बात कही है कि कर्म को जोड़ करके जरूर साथ में चलिए, कर्म को जोड़ के नहीं चलेंगे तो वास्तुशास्त्र के मात्र आधार पर आप चलेंगे तो तकलीफ भोगेंगे, ये भी एक पक्ष है। क्यों आप इधर ही और सब चीजें तो भूल जाएंगे और केवल मकान देखते रहेंगे और उसी आधार पर तोड़फोड़ चालू कर देंगे, और जो आपको करना चाहिए वो आप बिल्कुल छोड़ जाएंगे, भूल जाएंगे। जो आपको करना चाहिए वो बात कर रहा हूं इसलिए आलेख में। जैन व्रत और पर्व, इस पर कई पुस्तकें भी छप चुकी हैं, और ये भी तय है कि जो भी आलेख आता है वो ग्रंथों के आधार पर ही आता है। व्रत पर्व और त्योहार संस्कृति के थर्मामीटर हैं। भारतीय चिंतन में संस्कृति को मानव जीवन का नवनीत और सभ्यता को परिधान कहा है। व्रत जीवन को पवित्रता प्रदान करते हैं, व्रतों से अपने पापों का प्रायश्चित, आत्मा की शुद्धि, विचारों में विशालता, हृदय में करुणा, वात्सल्य और अहिंसा भाव जागृत होता है। लौकिक अभ्युदय की उपलब्धि तथा प्रगति और प्रेरणा के लिए सभी देशों, सभी धर्मों और सभी जातियों में व्रतों और पर्वों का महत्वपूर्ण स्थान है। विधि पूर्वक किए गए व्रत यथेष्ट कार्य सिद्धि में साधक हैं, और व्रतों के साथ सरस कथाएं मानव जीवन में साहस, धैर्य, मनोरंजन के साथ जीवन को प्रेरणादायक संबल प्रदान करती हैं। जैन संस्कृति में व्रतों और पर्वों का आधार अहिंसा है, इसलिए मानव जीवन शोधन के लिए व्रत अवनाभावी हैं। समस्त श्रावकाचार एवं श्रवणाचार व्रत रूप ही हैं। इस आलेख का जैसा कि विषय है व्रत और पर्व, वस्तुतः पर्व का महत्व व्रतों से है, क्योंकि व्रतों के बिना पर्वों का कोई महत्व नहीं है। अतः इस दृष्टि से सर्वप्रथम व्रतों के स्वरूप, महत्व और उनके क्रमिक विकास पर विचार करना आवश्यक है। यद्यपि इसमें अब आलेख तो काफी बड़ा है और आज समय चूंकि बहुत कम है, तो हम उस बात को ध्यान में रखते हुए ही विषय का प्रतिपादन करेंगे और प्रमुख बिंदुओं को लेंगे। यहां पर व्रत शब्द को परिभाषित करते हुए सागर धर्मामृत में कहा है कि संकल्प पूर्व का शेव्यो नियमो अशुभ कर्मणा निवृत्ति वा व्रतम शाद वा प्रवृत्ति शुभ कर्मणी। सेवन करणी योग विषयों में संकल्प पूर्वक नियम करना अथवा हिंसादि अशुभ कर्मों से संकल्प पूर्वक व्रत हो जाना, और पात्र दानादि शुभ कर्मों में संकल्प पूर्वक प्रवृत्ति करना, ये व्रत है। व्रताचरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा है कि व्रतेन यो विना प्राणी पशुरे विना संशया, योग्या योग्य न जानाति भेदस्तत्र कुतो भवेत। व्रत रहित प्राणी निसंदेह पशु के समान है, जिसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं, ऐसे मनुष्य और पशु में क्या भेद है। अतः व्रत विधान करना प्रत्येक नर नारी के लिए आवश्यक है। जैन शास्त्रों में व्रतों के फलों के संबंध में भी चर्चा की गई है, मैं श्लोक छोड़ रहा हूं, केवल मात्र उसका आशय ले रहा हूं। व्रतों का पालन करने के फल से यह जीव देव और मनुष्यों में इंद्रिय जनित सुख भोग कर पश्चात देवेंद्रों की स्तुति किया जाता हुआ मोक्ष पद प्राप्त करता है। व्रतों की संख्या के संबंध में विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्रथम शताब्दी से पूर्व व्रतों की संख्या बहुत कम थी, परंतु पौराणिक काल में और जो पुराण साहित्य जो उपलब्ध है उसमें व्रतों की संख्या का विकास स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, और नौवीं शताब्दी में व्रतों की संख्या काफी हो चुकी थी। और यद्यपि व्रतों के विधि विधान एवं उद्यापन का प्रचलन चौदहवीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है, इसके व्रत विधान के संबंध में डॉक्टर नेमीचंद जी यारा वाले जो कि अब तो दिवंगत हो गए और भारतीय ज्ञानपीठ से पुस्तक छपी है तिथि निर्णय ये पुस्तक छपी है, उसमें उन्होंने काफी प्रकाश डाला है, तिथियों के बारे में भी काफी प्रकाश डाला है, किस तिथि से हमें व्रत प्रारंभ करना चाहिए, यदि छह तिथि है और वृद्धि तिथि है तो उनको हमें छह तिथि को किस प्रकार से लेना चाहिए, वृद्धि तिथि को हमें किस प्रकार से लेना चाहिए। जैन संस्कृति में जैसा कि अभी उपाध्याय जी कह रहे थे, उपाध्याय बोलते आपके लिए, जय कुमार जी बोल रहे थे कि ज्योतिष शास्त्र का संबंध है, वस्तुतः व्रतों के साथ में भी ज्योतिष शास्त्र का संबंध है। अपन परीक्षण पर्व है, जब करते हैं कोई तिथि छह हो जाती है तो हमें उस हिसाब से उसका निर्णय करना पड़ता है कि इसमें उदया तिथि कितने घट है, कितनी घटी है, छह घटी है या नहीं है इत्यादि करके। और जो वैदिक संस्कृति है उसका अलग नियम है और जैन संस्कृति है उसका अलग नियम है, इस प्रकार से उसके निर्णय होते हैं। तो वस्तुतः उसमें हमें देखना चाहिए और जो कैलेंडर वगैरह छापते हैं समाज से उनमें भी इन सबका ध्यान रख करके तदनुसार व्रतों की तिथि निर्णित होती है। व्रतों के विधि विधान उद्यापन का प्रवचन 14वीं सदी से प्रारंभ हुआ, परंतु कोई व्यवस्थित ग्रंथ नहीं था उस समय, उसके आधार पर व्रतों के स्वरूप और उनकी विधि तिथियों उनके अनुष्ठान जाप मंत्र पारणा में ग्रहण की जाने वाली वस्तु इत्यादि का परिज्ञान उस समय उतना नहीं था। बाद में जो है इस दिशा में जो प्रयास किया वो क्रिया कोश जो कि किशन सिंह जी ने लिखा और बाद में पंडित बारीलाल जी टीकमगढ़ वालों ने भी एक पुस्तक लिखी, उसमें भी उन्होंने काफी विस्तार से लिखा, परंतु फिर भी वो पुस्तक संपूर्ण नहीं हुई। तो डॉक्टर नेमीचंद जी ने जो पुस्तक प्रकाशित की है और जो उन्होंने संग्रह किया है बहुत अच्छी कृति है। जैन संस्कृति में व्रतों का प्रारंभ श्रावण मास से माना जाता है। ये ध्यान देने की बात है कि जैन संस्कृति में माने पर्व का भी प्रारंभ श्रावण मास से है और व्रतों का भी प्रारंभ श्रावण मास से है। और श्रावण मास में काफी व्रतें करीब हमने जब गिनती की, क्योंकि लगभग 350 व्रत उपलब्ध होते हैं और 350 व्रतों की कहानियां भी मिलती हैं, ये व्रत कैसे प्रारंभ हुआ और किन कारणों से प्रारंभ हुआ। तो ऐसे 350 व्रत जो मिलते हैं उसमें तकरीबन श्रावण महीना में हमने संख्या मिलाई तो करीब 40 व्रत तो श्रावण माह में ही प्राप्त होते हैं। फिर इसके पश्चात भाद्रपद मास आता है, तो भाद्रपद मास के लिए तो ये कहा कि अहो भाद्रपदाख्योयम मासो अनेक व्रता करा और धर्म हेतु परो मध्य अन्य माशा नाम नरेंद्र व्रत, तीन गुण व्रत चार शिक्षा व्रत, ये तो मूल रूप से व्रत हैं जो कि प्राचीन हैं। फिर इन 12 व्रतों में अहिंसा व्रत, आचौर्य व्रत और सत्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत और अपरिग्रह व्रत, ये 5 व्रत ऐसे हैं जो गृहस्थ और साधुओं की आचार संहिता की व्यवस्था करते हैं। इन 5 व्रतों का गृहस्थ एक देश और साधु जो है पूर्ण रूप से पालन करते हैं। द्वितीय कोटि में पुराणों में वर्णित जो लौकिक अभ्युदय की उपलब्धि होती किए जाने वालों व्रतों का जो विवरण है वो हमने 9 कोटि में विभाजित किया है। एक तो सावधि व्रत होते हैं, माने तिथि और दोनों की अवधि से एक किए जाने वाले जो व्रत हैं जिनकी संख्या करीब 15 है, जो जिनकी अवधि है कि इतने समय से इतने समय तक करना है, ये सावधि व्रत हैं। और एक निरवधि व्रत हैं जिनकी व्रतों की कोई अवधि नहीं है, निश्चित तिथि नहीं है, जैसे कि जनावलोकन व्रत है, माने भगवान को देख करके ही भोजन करना, ऐसा संकल्प जो करते हैं वो भी तो व्रत है, उसमें कई लोग लेते हैं। अब इसकी कोई अवधि थोड़ी कि हम एक दिन ही दर्शन करेंगे, वो तो आजीवन तक चलता है, तो इसकी कोई अवधि नहीं है। और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनकी अवधि होती है, जैसे 16 कारण व्रत है, उसकी अवधि है कि हमें 16 वर्ष तक करना है। 10 लक्षण पर्व के व्रत हैं, उनकी एक अवधि है। तो इस प्रकार से इनकी भी संख्या हमने इसमें निकाली है, निरवधि व्रत और देवसिक व्रत। इन व्रतों में दिनों की प्रधानता रहती है, माने जो दिन में किए जाते हैं, दिन में करने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि रात्रि में जो कुछ व्रत होते हैं तो उनमें केवल जाप का मंत्र का और चारों प्रकार के आहारों के त्याग की व्यवस्था है, तो देवसिक और नैसिक माने रात्रिकालीन। और मासावधि कुछ एक महीना की जिनकी अवधि होती है, जैसे ये कमल चंद्रायण व्रत है, इसकी एक महीना की अवधि है, उस दृष्टि से देखा जाए। वस्तुतः पहले जब ये व्रत आचार्य पद्मनंदी जी ने किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये व्रत क्यों कर रहे हैं, ये तो अपने यहां सुनने में ही नहीं आया कमल चंद्रायण व्रत। परंतु वो जब मैंने उनसे बात की और चर्चा की तो उन्होंने बताया कि ये समाधि के लिए अभ्यास करना चाहिए इस व्रत से, और जैसे जैसे इसमें उन्होंने वो जो विधि बताई है कमल चंद्रायण व्रत की कि पहले हम पूनम से माने प्रतिपद से एक ग्रास लें, फिर दो ग्रास द्वितीय को, फिर तृतीय को तीन ग्रास, चतुर्थी को चार ग्रास, इस प्रकार से लेते लेते पूनम तक 15 ग्रास, और फिर उधर से 15 ग्रास से फिर घटाइए। जैसे क्योंकि इसके चंद्रमा और उससे चंद्रमा की कलाओं को दृष्टिकोण में रख करके इस व्रत को रखा है, इसलिए कमल चंद्रायण व्रत इसका नाम भी रखा गया है। और उससे ये निश्चित रूप से हमारा राग भाव घटता है और आत्मशोधन में ये सहायक बनता है। ग्रंथों में उसमें आता है कि बाहुबली भगवान ने भी इस व्रत को किया था, ऐसा ग्रंथों में आता है, ब्राह्मी ने भी किया था, सुंदरी ने भी किया था इत्यादि करके। मासावधि वर्षावधि, जिन व्रतों की अवधि वर्षों तक चलती है, कुछ व्रत ऐसे हैं जिनकी जैसे 657 दिन तक चलती है, और ऐसे हमने कई लिए हैं 296 दिन तक चलती है, जैसे कर्मचूर व्रत हैं, इनको 296 दिन तक व्रत करना होते हैं। इसी प्रकार से मेरु पंक्ति व्रत हैं, इसमें सभी नंदीश्वरदीप से संबंधित सारे आ जाते हैं व्रत, तो इसको 697 दिन का व्रत बतलाया है। ऐसे तमाम ये कहना चाहिए कि कई वर्षों में चलते हैं, तो कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिन व्रतों का अवधि वर्षों तक चलती है। काम में व्रत, जो व्रत किसी अभीष्ट कामना की दृष्टि से भी किए जाते हैं, और अकाम में व्रत, जो व्रत निष्काम दृष्टि से किए जाते हैं, और उत्तमार्थ, जो व्रत उत्तम प्रयोजन की प्राप्ति हेतु किए जाते हैं। इस प्रकार से मोटे मोटे तौर से 9 कोटियों में इन व्रतों को विभाजित किया है। जैसे एक जिन रात्रि व्रत है, जिन रात्रि व्रत जो है देखा जाए तो आदिनाथ का जो पोता मारीच, अपने ग्रंथों में एक कथा मिलती है कि आदिनाथ का पोता जो मारीच है उसने इस व्रत को किस पर्याय में किया था, जब जो अमित कीर्ति नाम के जो मुनिराज थे, चारण रिद्धि धारी मुनिराज, वो जब उन्होंने उपदेश दिया तो सिंह पर्याय में जिन रात्रि व्रत का उसने धारण किया, और वहां से उसको ये कहना चाहिए कि भव सुदरा, इस प्रकार से उसमें उल्लेख मिलता है। यहाँ केवल जो रेखांकित करने का मात्र जो मानस है वो ये है मेरा कि महापुरुष अथवा हमारे श्रावक जो भी हुए वो व्रतों के माध्यम से आत्मशोधन करके मोक्ष को प्राप्त किया है। तो इसी प्रकार से रुक्मणी व्रत है, इसमें भी एक कहानी लंबी है कि प्रद्युम्न कुमार जो थे उनकी माता ने दीक्षा लेकर के, प्रद्युम्न कुमार ने दीक्षा लेकर के और इसके पहले ये व्रत किया था तब ये परिणाम बने थे, इस प्रकार से रुक्मणी व्रत का भी इसमें आता है। तो और जब सारे व्रतों का हम आकलन करते हैं तो ऐसी बात समझ में आती है, और आंकड़े भी बतलाते हैं कि महिलाओं ने ये व्रत सबसे ज्यादा किए हैं, पुरुषों ने बहुत कम किए, सबसे ज्यादा संख्या इन व्रतों में, और उन कहानियों के पढ़ने से ऐसा लगता है कि महिलाओं ने सबसे ज्यादा व्रत किए, पुरुषों ने कम। और उसमें भी संभ्रांत घर की जो महिलाएं थी उन्होंने सबसे ज्यादा व्रत किए, और जो दरिद्र परिवार में थी उन्होंने कम किए। उसके पीछे भी लॉजिक है, आर्थिक दृष्टि से भी है और कुल परंपरा की दृष्टि से भी है। तो इसमें भी विज्ञान तो है, अब उसको हम सब इसमें लिखे हैं बतलाते, परंतु समय की सीमाएं निश्चित रूप से पूज्य मुनिवर के जो प्रवचन होते हैं बहुत मार्मिक होते हैं, वो सभी सुनना चाहते हैं, तो हम उसमें बाधा नहीं बनना चाहेंगे, 20 मिनट में समाप्त कर देंगे। तो साथ में यह भी है कि पशु पक्षियों ने भी व्रत किए, ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं, जैसे कि मारीची के पर्याय में, सिंह पर्याय में उसने ये जो जिन रात्रि व्रत को किया तो स्वयं में वो ये कहना चाहिए पशु था, और पशु पर्याय में किया, तो इस प्रकार से व्रतों का इसमें काफी वो मिलता है। इसके साथ में मैंने पर्वों को भी लिया है। तो पर्वों में कहा गया कि जैन संस्कृति में नवीन वर्ष का प्रारंभ श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से होता है, तो पर्व का भी श्रावण कृष्णा से होता है और व्रत का भी होता है। इससे बात सिद्ध होती है कि पर्वों का जन्म भी श्रावण कृष्णा से हुआ और व्रत का भी। तो पर्व का और व्रत का ये कहना चाहिए कि जैन संस्कृति में अपना भाव है, क्योंकि अपने यहां पर जो पर्व मनाए जाते हैं वो आमोद प्रमोद मनोरंजन की दृष्टि से नहीं मनाए जाते हैं। तो हमें इस आलेख से अथवा इससे हमें ये ग्रहण करना चाहिए कि जितने भी पर्व हैं, चाहे परिश्रम पर्व हैं, अब इनको आप देख लीजिए, इसमें आमोद प्रमोद का कहीं प्रश्न नहीं है। 16 कारण पर्व हैं, अब ये जरूर है कि हम उन पर चिंतन नहीं करते हैं और आमोद प्रमोद में कई व्यक्ति ऐसा बिताते हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है, जैसे चतुर्दशी का समय आता है या सुगंध दशमी का व्रत आता है, तो उस समय जो है दूसरी ढंग से सब करते हैं। उस समय किस प्रकार से श्रृंगार करते हैं और क्या क्या सब वो करते हैं, तो आमोद प्रमोद में लेने लगे हैं। परंतु वस्तुतः हमारे यहाँ पर्व जो हैं वो आमोद प्रमोद के पर्व नहीं हैं, आत्म साधना के लिए और आत्म शोधन के लिए पर्व हैं। श्रावण कृष्णा को इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि भगवान महावीर की प्रथम तिब्बत धुनी खिरी थी, अतः यह दिन वीर शासन जयंती पर्व के रूप में प्रचलित है। जैन संस्कृति का यह पर्व प्रथम पर्व और पर्व का प्रारंभ इसको कह सकते हैं हम। पर्व और व्रतों का घनिष्ठ संबंध है। जैन संस्कृति में पर्व का महत्व तभी है जब उनके साथ व्रत पर्व के साथ व्रत नहीं है तो पर्व निरर्थक हैं इत्यादि। जैसे होली है, विजयादशमी है, इनके साथ हमारे यहाँ कोई व्रत वगैरह नहीं होता है। यद्यपि होली के बारे में और विजयादशमी के बारे में भी कहानी मिलती है, कई तो पर्व ऐसे जोड़ दिए हैं बाद में जो कि वस्तुतः करने योग्य नहीं है। माने कई व्रत ऐसे जोड़ दिए, माने अपनी मर्जी से भी जोड़ दिए कुछ बातों को लेकर के, परंतु ऐसा भी नहीं कि सभी वो हैं। अब जैसे हमने देखा कि नवरात्रि व्रत, नवरात्रि का तो हम ही सोच रहे थे कि ये नवरात्रा की दृष्टि से रखा गया, परंतु जब हमने उसकी कहानी पढ़ी और उसके वो विधि विधान पढ़ा तो उसमें नवरात्रि का कोई विधान नहीं है किसी प्रकार का, परंतु वो 9 दिन पूर्व भरत ने किया था वो विधान, ऐसा उसमें लिखा है। अब हम पुराणों को झुटलाएं या अपनी बातों को कहें, ये समझने की बात है। तो उसमें लिखा है कि भरत चक्रवर्ती ने जब वो विजय प्राप्त की तो उन्होंने 9 दिन पहले से ही साधना करना चालू की थी, और उसमें विधि विधान भी लिखा है। तो उसमें लिखा तो यही है कि पूजन, भक्ति, स्तुति, वंदना और ये स्तोत्र, भगवान की भक्ति करना, पूजन करना, यही सब लिखा है उसमें। और कोई अन्य ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरी जगह जाकर के उन्होंने किसी दूसरी की पूजन भक्ति की हुई, ऐसा नहीं है। तो कुछ तो ऐसे हैं कि जिन व्रतों को हम करते नहीं हैं तो मन में ऐसी कई भ्रांतियां खड़ी हो जाती हैं, और कुछ व्रत ऐसे हैं कि वस्तुतः कई लोगों ने अपने मन से भी उसमें जोड़ दिए हैं। तो उन व्रतों पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि कौन व्रत तो हमारे आगम सम्मत हैं। इसी प्रकार से उसके विधि विधान का भी आवश्यक है। कई ग्रंथ जो अभी छपे हैं, बाद में नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, तो उनमें एक सी विधि सारे व्रतों की बतला दी और हर जगह अपने सिद्धांत के हिसाब से उस चीज को वहां पर जोड़ दिया गया है, जबकि आगम के विरुद्ध है। तो उनको भी संशोधन करने की आवश्यकता है, नहीं तो जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो उन व्रतों को उसी ढंग से करेगी। और आज कई व्रतों की परंपरा करने की ऐसी चालू भी होगी, वो परंपरा ये कहना चाहिए। उन व्रतों के साथ में शासन देवी देवताओं को जोड़ दिया गया, अब उनका वहां पर कोई औचित्य नहीं है परंतु कई जगह उसको जोड़ा गया। तो ये देखने की आवश्यकता है कि मूल रूप से ये व्रतों का जो कहानी वगैरह या कथा वगैरह दी वो कहां से दी है। तो निश्चित रूप से इस पर शोध कार्य होने की आवश्यकता है पूरी तरह से, तब इसका सही ढंग से विवेचन आ सकेगा सामने। और ये शोध कार्य भी करवाऊंगा मैं किसी न किसी विद्यार्थी से, और जिससे कि इसकी सही परत में हम पहुंच सकें। फिर इसके बाद हमने इन पर्वों की भी कोटियां दो विभक्त की, एक शाश्वत पर्व है, सामयिक पर्व है, शाश्वत पर्वों भी नाम गिनाए हैं जो प्रमुख रूप से आप सभी जानते हैं, परीक्षण पर्व है, अष्टानिका पर्व है, रत्नत्रय व्रत हैं, ये सब जितने हैं ये शाश्वत पर्व हैं जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और सामयिक पर्व हैं जो कि रक्षाबंधन है, ये कुछ घटित घटनाओं के आधार पर हुए, उनकी भी व्रत हम सभी करते हैं। इस प्रकार पर्व के दिनों में किए हुए अभ्यास क्रमशः पूर्णता की ओर ले जाते हैं, सीढ़ियों को क्रम से पार करते हुए हम मंजिल पर पहुंचते हैं। उसी प्रकार पर्व में अनेक प्रकार की साधनाओं को अपनाते हुए हम आत्म तत्व की ओर उपलब्धि रूपी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार यदि पर्वों को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से वैज्ञानिक क्रम क्रम से एक एक सीढ़ी को पार करते हुए अपने सत्य की खोजने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से हमारा वितराग विज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति भी अपने व्रतों के माध्यम से क्रम क्रम से आत्म शोधन करता है। ये तो आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि विज्ञान ने आज तक आत्म तत्व की तो खोज कर नहीं पाई, और सारी चर्चा हमारी आत्म तत्व पर आधारित है जितनी भी चर्चा है, क्योंकि वो जहां भी जब मैंने एक लेख पढ़ा था तो उसमें पढ़ करके मुझे भी कुछ ऐसी हंसी सी आई कि आत्मा 11 ग्राम है, तो मैंने वो हेडिंग थी आत्मा 11 ग्राम, तो मैंने सोचा कि वो 11 ग्राम कैसे, तो उसका जो निकालने का तरीका बताया कि जो व्यक्ति मरने वाला था मरणासन्न था उसको पहले तौल लिया, तौल करके तराजू पर रख दिया और फिर वो मर गया, मरने के पश्चात जो शेष बेट रह गया तो 11 ग्राम घटाओ। तो ऐसे भी कुछ खोजें आई हैं, तो कहने का मतलब है कि आत्मा की तरफ तो कोई खोज अभी तक हुई नहीं इस ढंग की, और हमारी सारी चर्चा आत्मा के ऊपर है, चाहे व्रतों की ले लें, चाहे पर्वों की ले लें, चाहे और अन्य अन्य जितनी भी चर्चाएं ले लें, पहुंचेंगे हम वहीं पर। तो क्योंकि हमारे यहां तो बिल्कुल साफ कहा, पक्षपातो नमि वीरे न द्वेषा कपला दिशु युक्तिमद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह, जिसके युक्तिपूर्ण वचन है उसको हम विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। और समंत्र भद्राचार्य परम वैज्ञानिक थे, हम चूंकि दर्शन के विद्यार्थी हैं तो जो तर्क संगत बात है उसको स्वीकार करते हैं निश्चित रूप से, और जो वैज्ञानिक भी अपने तर्क रखते हैं जहां हमारी बात घटित होती है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, और जहां नहीं घटित होती है ये मानते हैं कि विज्ञान अभी अधूरा है। इसी प्रकार से आयुर्वेद विज्ञान की भी चर्चा की, आजीविका के संबंध में भी चर्चा की हमने इसमें वैज्ञानिक दृष्टि से। अंतिम एक बात करके समाप्त कर रहा हूं कि पूज्य वर्णी जी व्रतों के संबंध में बहुत अच्छी चर्चा करते थे, और एक उन्होंने अपने वर्णी जीवन परिचय में, मैंने वर्णी जीवन गाथा में एक बात कही है कि व्यक्ति को व्रतों के ऊपर सबसे ज्यादा असर जो पड़ता है वो पर्यावरण का। तो उन्होंने एक अपने जीवन गाथा में लिखा कि मैं एक दिन सो रहा था तो सपने में मैंने देखा कि मेरे सामने कोई बैठ करके चप्पलें बना रहा है, जूते सिल रहा है और चप्पलों की दुकान लगाए हुआ है। तो वर्णी जी जब उठे तो उन्होंने अपनी शास्त्र सभा में पूछा कि भाई ये घटिया क्वालिटी का स्वप्न है, मुझे पहली बार आया है ऐसा कि कोई चप्पलें बना रहा है, कोई दुकान लगाया हुआ है, ये आखिर मुझे आज तक ऐसा स्वप्न नहीं आया बुरा, मुझे स्वप्न आए तो शेखर जी की वंदना करते हुए या मुनिराजों को आहार देते हुए, परंतु पहली बार ऐसा है। तो ये एक वृद्ध माता जी बैठी थी, देखो विज्ञान तो हमारी माता जी भी समझने लगती बैठे बैठे, और प्रवचन प्रतिदिन सुने, हमारे पूज्य मुनिवर यदि चातुर्मास कर लें तो पूरा जयपुर विज्ञानमय हो जाए। हे आप सुन लीजिए, आप मैंने सभी लोग विज्ञान समझने लगे और सारे युवा वर्ग विज्ञान पढ़ने लगेंगे और हर चीज विज्ञान की तराजू पे तौलने लगे निश्चित रूप से। तो ये तो सब लोग प्रयास करें तो निश्चित रूप से जयपुर कोई लाभ मिल सकता है। तो वर्णी जी से उस वृद्ध माता जी ने कहा कि बाबा जी आपका जो आहार हुआ था कल वो उस व्यक्ति के घर हुआ था जिसके घर पर चप्पलों की दुकान है, वो चप्पलों का व्यापारी है। तो वर्णी जी आश्चर्यचकित रह गए कि अरे देखो वो सबसे ज्यादा व्रत करती थी वो महिला। देखो तो कहने का तात्पर्य जो व्रत करते हैं और इस प्रकार से निरंतर वो संपर्क में रहते तो वो सारी बात को समझने लगते हैं। तो अपने यहां तो जो माता बहन है वो भी विज्ञान समझती हैं,
वो बरणी जी ने अपने शांति पथ प्रदर्शक में जो आहार का परिशिष्ट दिया है और चौके की जो परिभाषा बतलाई है वो बरणी जी ने पर्याप्त बतला दी, वो माता बहने पढ़ लें तो सारा विज्ञान उसमें पड़ा हुआ है। तो तात्पर्य मेरा कहने का इतना सा है कि हर घर में विज्ञान समझते हैं लोग बाग, परंतु उसको उस ढंग से घटित करने की आवश्यकता है। और इस आलेख में मैंने पूरा सब इसमें दिया है, समयाभाव के कारण मैं यहीं पर विराम लेता हूं। बोलिए पूज्य मुनिवर ईश्वर क्षमा सागर जी महाराज की।
धन्यवाद। हमारे आज के इस सत्र के दूसरे प्रमुख वक्ता डॉक्टर आर सी जैन भोपाल से पधारे हैं। आप मौलाना आजाद इंजीनियरिंग कॉलेज भोपाल में सहायक प्राध्यापक वास्तुकला विभाग में हैं। आपने फाइन आर्ट्स एवं क्राफ्ट में डिप्लोमा किया है, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व में एमए, हरप्पन स्क्रिप्ट में पीएचडी की है। टर्किश सरकार की शोध कृति पर आप इस्तांबुल गए थे। यूजीसी की शोध परियोजना के अंतर्गत हरप्पन लिपि पर आपका कार्य चल रहा है और लगभग 10 शोध पत्रों का प्रकाशन आप कर चुके हैं। मेरा आप डॉक्टर रमेश चंजी जैन साहब से अनुरोध है कि वे अपने उद्बोधन से हमें प्रेरित करें। आपके स्वागत हेतु तिलक के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं सुभाष जी चौधरी को।
प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाना होगा तो उसकी मैं कोशिश करूंगा। मेरे आलेख का शीर्षक है हरप्पा संस्कृति में दिगंबरत्व की उपस्थिति। हाँ वो भी हो सकता है जी। हाँ 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 जी ठीक है। दलित दिगंबरत्व की प्राचीनता को बल मिलता है। यद्यपि यों तो स्वयं जैन समाज साधुओं द्वारा वस्त्र ग्रहण के मुद्दे पर श्वेतांबर और दिगंबर नामों से दो संप्रदायों में विभक्त हो गया है, शायद इसी परिस्थिति के चलते दिगंबर परंपरा के आरंभ का श्रेय भगवान महावीर स्वामी को दिया जाने लगा है। एक विद्वान ने ऐसा लिखा है, यद्यपि यह एक भ्रांत धारणा हो सकती है। वैदिक साहित्य के अध्येता वैदिक काल में दिगंबर साधुओं की उपस्थिति स्वीकारते हैं। वातरसन मुनियों वातरसना मुनिये की पहचान नग्न साधुओं के रूप में की जाती है। इस अवधारणा की सबसे सशक्त पुष्टि हरप्पा संस्कृति के प्रकाश में आने से हुई। दक्षिण एशिया के इतिहास का प्रारंभ 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक विदेशियों द्वारा मात्र बौद्ध काल या मगध संप्रदाय साम्राज्य के वर्षों तक स्वीकार किया जाता था। वर्ष 1921 में हरप्पा संस्कृति के उद्घाटन ने उस सीमा को करीब 2000 वर्ष पीछे स्थापित कर दिया। इस संस्कृति के प्रारंभ की सीमा अब वर्ष 3000 ईस्वी पूर्व के लगभग मानी जाती है। हरप्पा संस्कृति के पुरातात्विक अवशेषों में विद्वान अध्येताओं को नग्न अवस्था में साधु संन्यासियों की बलुआ पत्थर की तराशी हुई मूर्तियां व अनेक चित्र उकेरे हुए प्राप्त हुए हैं। सामान्यतः ये चित्र खड़िया पत्थर में तराशकर बनाई गई मोहरों पर उकेरे हुए हैं। इनमें कुछ चित्र कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए सिद्ध पुरुषों के हैं और कुछ चित्रों में तपस्वियों को योग मुद्राओं में संलग्न दिखाया गया है। इन मोहरों पर उकेरे गए चित्रों के साथ हरप्पा के प्रतीक चिन्हों के माध्यम से कुछ लिखा हुआ भी प्राप्त होता है, मगर अभी तक विद्वत समाज इस लिखावट के पढ़े जाने के विषय में एकमत नहीं है। विश्व की दूसरी प्राचीन संस्कृतियों की ओर देखने से ज्ञान होता है कि दिगंबरत्व वहां भी विद्यमान था। मेसोपोटामिया की प्राचीन संस्कृति में अन नामक देवता की मूर्ति नग्न अवस्था में बनी हुई कायोत्सर्ग मुद्रा में प्रदर्शित की गई हैं। यहाँ एक विशेष बात मैं बता दूं कि अन्न शब्द का संयोग से अर्थ फ्रेंच के यून या इंग्लिश के वन शब्द से सीधे होता लगता है और शायद हमारे अंक शब्द से उसका संबंध हो। अतः आदि के रूप में अन्न का की स्थापना हो सकती है। तो आदिनाथ नाम से जिस तरह से तीर्थंकर की कल्पना संभव है, उसी प्रकार अन्न जो है उसका कहीं एक संबंध आदि भगवान से होता हुआ दिखाई देता है। यहां प्राचीन मिश्र की संस्कृति से संबंधित पुरातात्विक अवशेषों में विजयी नग्न साधुओं का चित्रण मिलता है। फादर हेरास के शब्दों में ये विजेता जिन्हें बाद के वर्षों में वृषद नामक लोगों के रूप में पहचाना जाता है, बाहर से आकर मिश्र में स्थापित हुए थे। ऋषभ नामधारी विदेशी विजेताओं को प्रतीक रूप में प्रबल बलशाली वृषभ के रूप में चित्रित किया गया है। इन विजेताओं की जो अनेक पुरातात्विक अवशेषों में नग्न अवस्था में चित्र हैं, श्री सुधांशु कुमार राय भारत से आए हुए विदेशियों के रूप में पहचान करते हैं। मतलब यहां भी कहीं ना कहीं एक और ऋषभ नाम और बाहर से आ करके मिश्र में बलशाली योद्धाओं के रूप में वो स्थापित हुए। और विद्वानों का एक स्पष्ट धारणा ये है कि ये काल जब वो वहां जाके स्थापित हुए थे वो विश्व की प्रारंभिक अवस्था थी। जैसे कि उन्होंने ही उस संस्कृति को संस्कृति का मार्ग दिया हो। वृषभ वंशी अथवा वृषभ तत्व से प्रेरित समाज की उपस्थिति संसार की लगभग सभी प्राचीन संस्कृतियों में देखते हुए उस समाज में दिगंबरत्व के अनुसरण की पहचान करते हुए हरप्पा संस्कृति में विद्यमान वृषभ प्रतीक व दिगंबरत्व की गहरी पड़ताल की आवश्यकता अनुभव होती है। इसी जिज्ञासा के चलते दिगंबर साधुओं के चित्रों से युक्त हरप्पा के लेखन के पाठ के प्रयास किए गए हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि वहां बजाय समय की सीमा को देखते हुए वो चित्र भी दिखा दूंगा और उसी में उनका जो प्रयास मैंने किए उसको ही बता। इसी प्रकार ये दूसरा जो चित्र है जिसमें फिर से नग्न अवस्था में कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी हुई जो चित्र बना हुआ है उसके साथ तीन जिसको हरप्पन साइंस कहते हैं बने हुए हैं, जय रह गंड या गंध या संध। माने ये संभावना अलग अलग ध्वनियों की संभव है, लेकिन मेरे पद्धति में ये लिपि जो है ये पूर्णतः ध्वन्यात्मक है, फोनेटिक है, इसलिए उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो प्रारंभिक अवस्था में लिखने की पद्धति थी इसलिए संदेह की गुंजाइश उसमें बनी हुई है। तो ये बनता है जय रहे, मैंने जो डिसओन करता है गंड माने बंधन को। इसमें संध शब्द भी निहित है और संयोग देखिए कि संध शब्द से इंग्लिश का हिंद शब्द उसी तरह से बनाया है जिस तरह से सिंधु शब्द से हिंदू शब्द बना है। तो हिंद के जितने अर्थ देखेंगे वो इससे मेल खाते हुए हैं, लेकिन यहां गंड के रूप में इसको हमने लिया है और निर्ग्रंथ इसको इसकी पहचान की है। जो ये जड़ भरत शीर्षक से ये एक मिट्टी की पट्टिका है, ठीक 1-2 इंच लंबी। इसके दोनों तरफ ये दो चित्र बने हुए हैं, एक में ये बीच में दुमंजिले आकार का कोई एक स्ट्रक्चर खड़ा है, उसके आगे एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाया गया है और एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हुआ है। इसके बराबर में ये वृषभ का एक चित्र बना हुआ है और यहां ये तीन अक्षर बने हुए हैं। तो जो हमको देखने में आया है कि ये संयोग है कि भरत को जड़ भरत के रूप में बृहत्तर हिंदू समाज में उसका स्वीकार हुआ है और ये जो तीन अक्षर बने हुए हैं जय द्वय व्रत, अगर इस रूप में इसकी पहचान करें तो इसका मतलब होगा वो जो दो जीवन व्रत, क्योंकि ये दो जीवन व्रतों का चित्रण इसमें किया गया है और इसका इसी से जड़ भरत भी शब्द बन सकता है। यह बड़ी मजेदार चीज है कि कैसे शब्द, जैसे मैं हंसी की बात है बता दूं आपको, उल्लू का पट्टा बोलते हैं एक गाली के रूप में, लेकिन ये प्राकृत भाषा में चुल्ल उपठाक बोला गया शब्द है। चुल्ल उपठाक का मतलब था छोटे कद का नौकर या सहायक, लेकिन वो कैसे चलन में आते आते उल्लू का पट्टा बन गया और आज वो उसी रूप में प्रचलित है। तो मैं ये इसलिए बता रहा था कि शब्द किस तरह से अपने रूपाकार बिल्कुल बदल लेते हैं और नए अर्थों में हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे कि ये जो दो व्रत लिखा गया है वही शायद बिगड़ के जड़ भरत बन गया, ये तो एक बात हुई। मेन चीज ये है कि सौवीर के राजा जब पालकी में जा रहे थे और उनके कहार थक गए तो उन्होंने कहा भाई एक कहार कहीं और बाहर से पकड़ के लगा लो, तो जो एक कोई निठल्ला संड मसंड बैठा हुआ था आदमी उसको कहा भाई तुम लग जाओ, तो वो तो खुशी से लग गया आकर के, लेकिन चलते हुए उनकी पालकी जो है डगमगाने लगी। तो कहते हैं कि सौवीर ने पहले तो अपने नौकर से कहा भाई ये क्या हो रहा है ये, तो उसने कहा साहब ये जो नया आदमी पकड़ा है ये ऐसा कर रहा है। तो वो उससे पूछते हैं भाई ये तुम इसको ये तुम्हें ढोना नहीं आता ये लेके चलना, कहते कौन किसको चला रहा है, मैं चला रहा हूं या आप इतने सबको लेके ढो रहे हैं, जो कहार है पालकी है राजा का वैभव है आप सब उसको ढो के चल रहे हैं। तब वो सौवीर का राजा उस अज्ञान व्यक्ति अज्ञानी समझे जाने वाले व्यक्ति का शीर्षक शिष्य बन गया। ये एक कथा प्रचलित है। दूसरी कथा नीचे दी गई है, इसमें ये एक योगी पुरुष बैठा हुआ है बीच में और इधर एक ये शेर बना हुआ है, एक दूसरा उसको महादेवन ने अपनी पुस्तक में बकरी समझा है और एक नीचे भी शेर है और इधर एक शेर पेड़ के नीचे बैठा हुआ है जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है। तो ये तो एक बहुत ही स्टैंडर्ड किस्म का साइन है कि एक पेड़ के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिलता है और नीचे शेर है, संभवतः ये किसी एक विशेष बिंदु को व्यक्त करने के लिए। तो इस कहानी में आप देखिए कि ये कहानी इस तरह से उपलब्ध है कि यही भरत दूसरे जन्म में, यानी उससे पहले जन्म में जिस जन्म में वो गुरु बन गए उससे पहले जन्म में साधना कर रहे थे, तो एक शेर को देख करके एक मृगी जो है अपना गर्भपात त्याग करके मर जाती है और उसके शावक को ये मुनि पाल लेते हैं, उसी की सजा के रूप में उनको एक बार फिर से जन्म लेना पड़ता है। इस रूप में ये दो जीवन व्रतों का चित्रण वहां हुआ था, ये मैंने पहचाना और इसमें जो ये लिखा गया ये उससे पूर्णतः मेल खाता है, चाहे वो जड़ भरत के रूप में हो या कि वो जो दो जीवन व्रत उस रूप में हो। तो मैं ये मेरा एक अब देखिए यहां ये एक बहुत ही सुंदर सील है हड़प्पा की और इसके ऊपर ये एक क्रम में ऊपर नीचे लिखा ऊपर लिखा गया है, एक ये दूसरे क्रम में लिखा गया और एक ये तीसरे क्रम में, नीचे यहां पर भी एक चिन्ह बना है। साथ में आप देखिए कि एक मेढ़ा बना है, उसके आगे एक नतमस्तक व्यक्ति है और वो एक दिगंबर कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए व्यक्ति के आगे नतमस्तक है, ये देखिए, और नीचे ये सात राजपुरुषों जैसे एक पंक्तिबद्ध खड़े हैं। तो जो इसका भाव समझ में आता है उससे दो कहानियों का चित्रण समझ में आता है, जैसा इसमें पढ़ा उसको देखकर भी और जैसा इसमें चित्रित है। एक जो मेरे को सबसे ज्यादा छूती है जो कहानी, वो है जब भरत मुनि बाहुबली के कष्ट को समझ करके उनकी सांत्वना के लिए कहते हैं कि आप अपनी जमीन पर ही खड़े हैं, ये आपका राज्य है, और वो अपने राज्य उनको अर्पित करने की बात। तो ये सत आसन जो है ये मेढ़ा के रूप में वो उनको अर्पण कर रहे हैं, ऐसा इसमें संभव है कि वो कह रहा है परम नत कि महामहिम जो नत मस्तक हैं वो, और नीचे लिखा है सुत आसन या सत आसन। सुत आसन का मतलब एक संस्कृत में जो है हायर अपेरेंट के सेंस में भी आएगा, जो तो ये उनका आसन मैं आपको देता हूं। इस रूप में। और ये इसलिए ज्यादा संभव है कि यहां जैसे मेढक पीछे की तरफ है बैठी हुई, उसके दूसरे चित्रों में वो उसके आगे की तरफ है, जैसे कि वो उनको सत में ही अर्पण कर रहा है कि वो व्यक्ति वहां अभी भी खड़ा है उस इसमें, लेकिन ये इधर बैठे हैं और बीच में वो मेढक और वो आगे की तरफ जैसे उनको अर्पण कर रहा हो। तो ये अर्पण करने की जो भावना है, अब इसके जो और गूढ़ार्थ हैं उस पर मैं नहीं जा सकता हूं यहां चित्र में ऐसा। नेक्स्ट यही चित्र दोबारा दिखाया, इसको उलट दिया, कोई बात नहीं, ये वही चित्र है और थोड़ा बड़ा बनाया तो स्पष्ट इसमें हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये एक मेढ़ा है, ये बैठी हुई आकृति है, बहुत राजसी आकृति है, इसका अगर आप डिटेल्स देखें, और ये एक सिद्ध पुरुष जो है खड़े हुए हैं और नीचे की तरफ। चलिए नेक्स्ट प्लीज।